हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज की इस म्यूचुअल फंड एनालिसिस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे इज दैट वील बी एनालाइजिंग द म्यूचुअल फंड ऑफ मिस्टर केनेथ अंद्रादे, हु इज़ वन ऑफ द सुपर इन्वेस्टर्स जिनका म्यूचुअल फंड अभी बहुत रिसेंटली आया है। तो हु इज़ मिस्टर केनेथ अंद्रादे? सो मिस्टर केनेथ अंद्रादे एज एन इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स, एंड इसके साथ साथ इस इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस में ही हैज़ वर्क फॉर 10 ईयर्स एट कोटक एंड ही वॉज ऑल्सो एट हेल्म एट IDFC म्यूचुअल फंड, जहाँ पे इनकी काफ़ी सारी स्कीम्स से मार्केट्स को बीट भी करा था। फिर 2015 में इन्होंने खुद का PMS खोल लिया बाय द नेम ऑफ ओल्ड ब्रिज कैपिटल, एंड उस PMS के अंदर इन्होंने बाकी क्लाइंट्स का भी जो पैसा मैनेज करा। तो इस टाइम पे इन्होंने ओल्ड ब्रिज कैपिटल के अंदर ही अपना जो म्यूचुअल फंड है वो लॉन्च करा है, विच इज़ नोन बाय द फोकस इक्विटी स्कीम, जिसके अंदर यील बी बाइंग 30 स्टॉक्स। एंड हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर इज दैट वी एज रिटेल इन्वेस्टर्स विल ऑल्सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम हिज इन्वेस्टिंग फिलोसफी। तो फर्स्ट की पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस स्कीम की डिटेल्स क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं, स्टाइल कैसा है। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि व्हाट आर द 5 key learnings फ्रॉम हिज इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स दैट वी कैन बोरो, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स इनसे हम 5 key चीज़ें क्या सीख सकते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में व्हाट वील डू इज दैट वी लुक एट टुडेज पोर्टफोलियो, कि इनकी स्कीम का पोर्टफोलियो क्या है एंड कैसे पोर्टफोलियो डिफरेंट है या फिर सिमिलर टू द बेंचमार्क है। एंड फाइनली व्हाट वील डू इज दैट वील डिस्कस अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। सो दिस इज़ वॉट द फ्लो ऑफ द वीडियो विल बी विद दिस, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि इनके जो पास में म्यूचुअल फंड इन्होंने मैनेज करे हैं एट IDFC म्यूचुअल फंड, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि पास में इनकी परफॉर्मेंस कैसे रही है। एंड पास में इनके कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो बहुत फेमस हो गई थी। तो यहाँ पर अगर इनके परफॉर्मेंस के हम रेट देखते हैं तो एक आपको यहाँ पर फंड देखेगा बाय द नेम ऑफ IDFC प्रीमियर इक्विटी। तो ये उस टाइम पर काफ़ी फेमस फंड था एंड इस फंड का AUM भी बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड ये फंड इन्होंने 2007 से लेकर 2015 तक मैनेज करा एंड इस फंड का जो रिटर्न था डेट वॉज 21% CAGR, फिर इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न था डेट वॉज 11.09% CAGR। टुडे दिस फंड इज नोन एज बंधन फ्लेक्सी कैप फंड एंड इस फंड की जो रैंकिंग थी डेट वॉज नंबर 1 आउट ऑफ द 20 funds इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। सिमिलरली अगर आप IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड देखते हैं, जो आज बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड के नाम से जाना जाता है, तो हमने जब लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी इन टर्म्स ऑफ की म्यूचुअल फंड फॉर 2023, तो उसमें बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड था बिकॉज उनके वैल्यू प्रिंसिपल थे शुरू से। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 2008 विच वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम टू स्टार्ट अ फंड राइट, तो 2008 से लेके जून तक अगर आप चेक करते हैं तो इनका जो रिटर्न था डेट वॉज 13.53% एंड कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न था डेट वॉज 8.89%। तो कैटेगरी के एवरेज रैंक में दे रैंक 2nd out of 12। ऑल दिस कैटेगरी रैंक्स आर गिवन बाय वैल्यू रिसर्च, सो वैल्यू रिसर्च इज वन ऑफ द सर्विसेज दैट वन कैन यूज टू रैंक म्यूचुअल फंड्स एंड कंपेयर देम। देन आप एक और देखेंगे तो बाकी इनकी जो बाकी परफॉर्मेंस IDFC टैक्स एडवांटेज फंड में थी, तो वहाँ पे 42% के आसपास का CAGR था 1 ईयर के अंदर एंड 9th out of 23। IDFC इंफ्रा फंड, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की साइकिल ख़राब हो गई थी तो वहाँ पे नेगेटिव रिटर्न रहा। वेराज अगर हम IDFC फोकस फंड देखते हैं तो वहाँ पे 15.43% के आसपास का CAGR बैठा इन स्पैन ऑफ 4 ईयर्स एंड इट रैंक 7th out of 19 इन द पर्टिकुलर कैटेगरी। तो ये तो इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बट इनके जो 2 funds थे जिनका हमने एग्जाम्पल लिया, दैट इज़ पर्टिकुलरली अगर हम वापस बात करें दैट इज़ ऑफ IDFC प्रीमियर इक्विटी एंड IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड। सो दीज वर द 2 funds डैडी वॉज मैनेजिंग एंड विच बिकेम पॉपुलर एज वेल। तो यहाँ से इनका जो फेम रिकग्निशन है एज अ फंड मैनेजर वो बहुत स्टार्ट हुआ। तो अब हम केनेथ अंद्रादे की जर्नी से, जो भी वो रिसेंटली म्यूचुअल फंड स्टार्ट करें, एक बार हम उसकी बात करते हैं। सो रिसेंटली ही स्टार्टेड ओल्ड ब्रिज कैपिटल करके इन्होंने एक इनकी कंपनी है जिसमें ये इस टाइम पे म्यूचुअल फंड खोले, विच इज़ अ स्कीम विच विल फोकस ऑन 30 स्टॉक्स। तो 30 स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, सो अगेन एक फोकस्ड अप्रोच है एंड नेम ऑफ द फंड इज़ ओल्ड ब्रिज फोकस्ड इक्विटी फंड। एंड इस टाइम पर अगर हम फंड को देखते हैं तो फंड का साइज 125 crores का ऑलमोस्ट, एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट 1.44% की है, फिर कैटेगरी एवरेज 0.72 की है। तो यूजली जब एक्टिव फंड्स अभी लॉन्च होते हैं तो उनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ऑन द हायर एंड ऑफ थिंग्स होता है, तो अभी इसकी एक्सपेंस रेशियो थोड़ी हायर एंड ऑफ थिंग्स पे है। एंड इस फंड का जो बेसिकली डिफरेंट इन्वेस्टिंग स्टाइल है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे इस फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं जो नॉर्मली बाकी म्यूचुअल फंड्स में नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वॉट आर द 5 key principles ऑफ केनेथ अंद्रादे इन्वेस्टिंग फिलोसफी, एंड एज यंग इन्वेस्टर्स और एज इवन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हम उनकी इन्वेस्टिंग फिलोसफी से क्या सीख सकते हैं। फिर मल्टीपल एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पास्ट भी लेंगे हम, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग क्या करेंगे, जो भी उनका ओल्ड ब्रिज कैपिटल का फंड है एंड उसके अंदर जो सेक्टोरल एलोकेशन है एंड कौन कौन से बिजनेसेस हैं एंड साथ साथ मतलब पूरे पोर्टफोलियो की क्या PE रेशियो एंड प्राइस टू बुक रेशियो, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली टुवर्ड्स द एंड हम कंक्लूजन और प्रोज एंड कॉन्स की तरफ चलेंगे। विद दिस लेट स्टार्ट विद द 1st key learning जो हम इनकी इन्वेस्टिंग फिलोसफी से सीख सकते हैं। जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, एक रिटेल इन्वेस्टर की बुल मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वी डू नॉट हैव एन एग्जिट फ्रेमवर्क। एग्जिट फ्रेमवर्क के साथ साथ सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या आती है, एक रिटेल इन्वेस्टर पास वैल्यूएशन फ्रेमवर्क नहीं है, वी डोंट नो हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिजनेसेस। थर्ड की बिग प्रॉब्लम क्या होती है, वी कैन नॉट फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। एंड लास्ट की बिग प्रॉब्लम क्या आती है कि वी डू नॉट हैव अ फाइनेंशियल प्लान इन प्लेस विच कैन हेल्प यू फॉर मल्टीपल ईयर्स एंड मल्टीपल डेकेड्स। सो ऑल दीज की फोर थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे हम आपको हर चारों चीज़ों पे एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वेर यू कैन लर्न हाउ टू वैल्यू बिजनेसेस, वेर यू कैन डेवलप योर ओन एग्जिट सिस्टम। एंड इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, दैट यू कैन डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग इंडिपेंडेंटली, एंड मोर ओवर यू कैन ऑल्सो फाइंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इंडिपेंडेंटली बाई यूजिंग मल्टीपल स्क्रीन्स दैट वी हैव टॉट इन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्सेज। इफ यू वॉन्ट टू रजिस्टर फॉर द SOIC मेंबरशिप, दैन लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड यू कैन यूज द कूपन कोड SOIC bonus 10 which is valid for the next 24 hours. So first key learning jo hum inki journey se le sakte hain is that what he preaches is that every business is cyclical, nothing is structural about businesses. Ki har ek business ki cycle aati hai, chahe wo valuation ki cycle ho, chahe wo competition ki cycle ho, chahe wo kisi aur cheez ki bhi cycle ho, but nothing is structural about businesses. And is ki learning ko padhte hue ek Marathon Asset Management ne book likhi hai Capital Returns. It keeps basically reminding me of that. कि कैपिटल साइकिल्स की प्लेइंग आउट इन बिजनेसेस। तो कैपिटल साइकिल्स कैसे प्ले आउट करती हैं, बेसिकली अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हाई ROC बन रहा हो, तो उस इंडस्ट्री में हाई अगर हाई ROC बन रहा है, तो उस ROC को देख के या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देख के, जो अगर बैंक में अगर हमारा 8 या 9% के आसपास का रेट ऑफ रिटर्न बैठता है, एंड अगर ROC किसी बिजनेस में 30-35% बन रहा है, तो कॉम्पिटिशन विल गेट अट्रैक्टेड। Because a lot of capital starts flowing in, what ends up happening is that too much supply gets created. और जब supply ज़्यादा create हो जाती है, तो उसकी वजह से competition ज़्यादा होता है, pricing walls होती हैं, and ROC over a period of time starts reducing. So this stands true for almost each and every business. तो हर business में एक different तरीके की cycle आती है. तो first की learning में अगर हम याद check करेंगे, तो recently अगर हम packaging films की बात करते हैं, तो बोपेट या बॉब फिल्म्स की, तो बोपेट या बॉब फिल्म्स के मार्जिन्स वेंट टू ऑलमोस्ट मोर देन 20% फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. आज तक बोपेट और बॉब फिल्म्स जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो कॉस्मो फर्स्ट हो, चाहे वो SRF का बिजनेस हो, चाहे वो पॉलीप्लेक्स का बिजनेस हो, आज तक इनके इतने मार्जिन्स नहीं हुए. बट क्योंकि इतने मार्जिन्स होने लग गए थे, तो वर्ल्ड में एक्सेस कैपेसिटी बन गई बॉब और बोपेट में, जिसकी वजह से आज मार्जिन्स हैव गॉन टू अ साइक्लिकल लो. तो आज आएगी आई थिंक ये कंपनीज के मार्जिन 2-3% पे आ गए, कुछ कुछ कंपनीज लॉस मेकिंग भी हो गई है. अनदर सच एग्जाम्पल इज दैट कि हम लोग एशियन पेंट्स, पेज इंडस्ट्रीज़, जो काफ़ी लोग कहते हैं कंपाउंडर बिजनेसेस है, जब इनका डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि वैल्यूएशंस की साइकिल होती है. और वैल्यूएशंस की साइकिल क्या होती है कि किसी भी बिजनेस की ग्रोथ रेट हमेशा एक सिंपल स्ट्रेट कर्व में नहीं हो सकती. ग्रोथ रेट्स के जो पेस होगी, डैट विल कीप फ्लक्चुएटिंग. जैसे एशियन पेंट्स पहले 20-25% पे ग्रो करता था, अब शायद से 14-15% पे ग्रो कर रहा है. तो या तो जैसे पेज इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल है, पहले 30-35% पे ग्रो करता था, अब ग्रोथ करनी मुश्किल हो गया क्योंकि कंपटीशन बहुत आ गया उस कैटेगरी के अंदर. सो अगेन दैट इज़ अगेन अ साइक्लिकलिटी एलिमेंट, कि जब न्यू कंपटीशन स्टार्ट्स एंटरिंग, तो इट इम्पैक्ट्स द परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स. परसेप्शन कैसे इम्पैक्ट होता है, तो वो भी हम आगे इनके की लर्निंग से सीखेंगे. बट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर साइक्लिकल. पहले PSU बैंक्स लोगों के लिए एक डीप साइक्लिकल सेक्टर होता था, बट आजकल लोग PSU बैंक्स को स्ट्रक्चरल सेक्टर बोलने लग गए. सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ साइकिल दैट प्लेज आउट. सिमिलरली अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करते हैं, तो आज इकॉनमी के अंदर क्या हो रहा है कि कभी भी आप इकॉनमी के ग्रोथ रेट को देखते हैं, तो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन जो कि कभी किसी भी कंट्री का अगर आप GDP कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज़ C+G+I+X-M, दैट इज़ कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि आप जितने भी कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेसेस देखेंगे, दैट इज़ अ कंजम्पशन पार्ट GDP ग्रोथ का, चाहे वो HUL का एग्जाम्पल हो, चाहे वो एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल हो, चाहे वो बर्जर पेंट्स का एग्जाम्पल हो, तो जो कंजम्पशन पार्ट ऑफ द GDP है, दैट हैज़ स्लोड डाउन. अर्बन कंजम्पशन अच्छा कर रही है, बट एकदम जो लाइक मास कंजम्पशन आइटम्स है, दोज हैव स्लोड डाउन, एंड वहाँ पे पेनिट्रेशन भी बहुत हो गया. तो इस वजह से एक साइक्लिकलिटी का आप ट्रेंड देख रहे होंगे कि इन कंपनीज़ की जो वैल्यूएशंस है, दे हैव स्टार्टेड मॉडरेटिंग. वेराज साइक्लिकल एलिमेंट क्या है, कि पहले लोग कहते थे कि जो गवर्नमेंट केपेक्स कंपनीज हैं, या जो इन्वेस्टमेंट लेड कंपनीज हैं, या जो कैपिटल गुड कंपनीज हैं, वो खराब बिजनेसेस हैं. बट क्योंकि इस टाइम पे इकोनॉमी में दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस इज डूइंग वेल, और दो सेक्टर्स आर डूइंग वेल, यू विल सी सम ऑफ द बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन दैट एस्पेक्ट. चाहे एग्जाम्पल अगर हम स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चर का एग्जाम्पल है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 20% वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, माने कंट्री के लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील प्लेयर की अगर 20% वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, तो इट मीन्स कि एक्चुअली में इंफ्रास्ट्रक्चर की टेलमेंट्स है. फिर कुछ रियल एस्टेट प्लेयर्स की बात करेंगे, बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर, चेन्नई, और बेसिकली प्लेसेस लाइक पुणे या मुंबई, तो यू विल सी कि रियल एस्टेट कंपनीज आर ग्रोइंग देयर प्री सेल्स एट अ रेट ऑफ 50-100% टाइप्स. तो अगेन दैट पार्ट ऑफ द इकॉनमी करेंटली इज डूइंग वेल. तो ये एक साइकिल है, ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर साइक्लिकल इन नेचर. पहले 2003 से लेकर 2008 के बीच में काफ़ी लोगों के रियल एस्टेट एक स्ट्रक्चरल सेक्टर होता था कि यार इंडिया में तो इतने लैंड की जरूरत होगी, बट अगेन साइक्लिकलिटी केम इन टू प्ले. तो फर्स्ट की लर्निंग इनके इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस है जो हमें सीखना चाहिए कि ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस ऑन दिस प्लैनेट इज साइक्लिकल, नथिंग इज स्ट्रक्चरल अबाउट बिजनेसेस. दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड. तो साइक्लिकलिटी बिजनेसेस की वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन. तो ये तो हमारी फर्स्ट की लर्निंग है. तो हम सेकंड की लर्निंग की तरफ आते हैं. तो सेकंड की लर्निंग में कहते हैं कि ही लाइक्स टू बाय कंपनीज विद लो मार्जिन्स एंड लो रिटर्न ऑन इक्विटी प्लस लो पी रेशियोज, एंड ही लाइक्स टू सेल कंपनीज एट हाई वैल्यूएशंस, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी एंड हाई मार्जिन्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज लिंक टू द फर्स्ट पॉइंट कि बिजनेसिस में साइक्लिकलिटी होती है. तो हमने जैसे पैकेजिंग फिल्म्स कंपनी का आज आप एग्जांपल लेंगे तो सारी कंपनीज रिटर्न ऑन इक्विटी आज उन कंपनीज का नेगेटिव टू सिंगल डिजिट हो चुका है. पर ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा लो मार्जिन्स एक साइक्लिकल सेक्टर में मिलेंगे. तो यहाँ पे मैं आपको 3 केस स्टडीज प्रेजेंट करता हूँ कि जब इन्होंने कंज्यूमर सेक्टर के अंदर 2005-6-7 के अंदर बहुत सारे कंज्यूमर बिजनेसेस लिए थे. एंड यू विल बी शॉक टू नो कैसे कंज्यूमर बिजनेसेस थे. बिजनेसेस लाइक एशियन पेंट्स, बिजनेसेस लाइक बाटा इंडिया, बिजनेसेस लाइक ग्लैक्सो. सो ऑल दीज थिंग्स ही बॉट वे बैक इन 2005-06-07 जब कंज्यूमर बिजनेसेस का 14-15-20 टाइम्स का अर्निंग्स होता था. तो यहाँ पे मैं आपको एक बारी फाइनेंशियल्स में भी दिखाता हूँ कि आपको कैसे दिखेगा. सो अगेन यहाँ पे अगर हम की लर्निंग लेते हैं तो अगर पेज इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेते हैं. सो अगेन दीज गाइज वर बेसिकली बाइंग पेज इंडस्ट्रीज व्हेन इट वाज एट अ मल्टीपल ऑफ 19-12 टाइम्स वे बैक इन 2007-09. क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि सब लोग इन्वेस्टमेंट्स और इकॉनमी लेड बिजनेसेस में घुस गए थे तो जो कंज्यूमर लेड कंपनीज है दे स्टार्टेड बिकमिंग चीपर. तो ये कंज्यूमर कंपनीज 5-10% की फ्री कैश फ्लो यील्ड पे ट्रेड करने लग गई थी या फिर 5-10% के अर्निंग्स यील्ड पे ट्रेड कर रही थी. सो दिस इज वन ऑफ द केस स्टडीज फ्रॉम द बुक मास्टर क्लास फॉर सुपर इन्वेस्टर्स. एक और इन्होंने जो कंपनी थी बाय द नेम ऑफ ग्लैक्सो स्मिथ, तो वो भी उस टाइम पे 20-21 टाइम्स के अर्निंग्स पे ट्रेड करती थी. देन यू कैन सी इट इवेंचुअली वेंट टू 52-60 टाइम्स अर्निंग्स ऑल्सो. सिमिलरली पेज इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल लेंगे तो बाद में जब कंज्यूमर स्टॉक्स की स्टोरी बनी तो उसके बाद ऑलमोस्ट 70-80 टाइम्स के अर्निंग्स पे चलेगी. फिर फाइनली अगर आप एशियन पेंट्स का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे एशियन पेंट्स भी इन्होंने एग्जांपल दिया था. तो एशियन पेंट्स का जब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बहुत नीचे आ गया था बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूसली गोइंग अप. तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द केस स्टडीज़ की दिस इज जस्ट हाईलाइट्स कि जब आप लो मार्जिन पे बिजनेस ले रहे हैं एंड यू आर सेलिंग देम एट हाई मार्जिन सो यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू द इंटायर पी री रेटिंग जर्नी. तो यहाँ पे पी कितना होता था एशियन पेंट्स का 20-21 टाइम्स के बीच में एंड लास्ट 18-19 टाइम्स के आसपास भी था. बीच में पी रेशियो कितना हो गया था एशियन पेंट्स का ऑलमोस्ट 97 टाइम्स के आसपास. एंड दिस वाज अ टाइम पीरियड इन लास्ट 2-3 इयर्स इन मल्टीपल ऑफ हिज इंटरव्यूज सो मिस्टर केनेथ अंद्रादे हैज आल्सो सेड दैट कि कंज्यूमर बिजनेसेस में अभी होने का टाइम नहीं है बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल्स आर लुकिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइंग लो आरओई लो मार्जिन्स एंड सेलिंग अ हाई आरओई एंड हाई मार्जिन्स एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम देम एज वेल. सो दिस वाज आवर सेकंड की लर्निंग. जो हमारी यहाँ पे थर्ड की लर्निंग है तो थर्ड की लर्निंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैपिटल एफिशिएंसी का. तो जो हमने फर्स्ट टू की लर्निंग्स में देखा कि साइक्लिकलिटी कंपटीशन से भी लिंक्ड होती है तो थर्ड पार्ट इज आल्सो लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ मोर कैपिटल एंट्रिंग इन इंडस्ट्री. तो थर्ड की लर्निंग में हमें ये हमें सिखाते हैं मिस्टर केनेथ अंद्रादे कि जब भी आप आरओसी का फॉर्मूला देखते हैं तो इट इज़ नथिंग बट ईबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. ईबिट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड डेट प्लस इक्विटी हो गया. तो कभी भी किसी इंडस्ट्री की जब प्रॉफिटेबिलिटी चले जाती है तो उसकी जो ईबिट होता है वो उसके हैंड से बाहर हो जाता है. माने वो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है अगर किसी इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो गई तो ईबिट इज आउट ऑफ योर हैंड्स. वेयर एज व्हाट इज इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी इज द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द पर्टिकुलर बिजनेस. तो ज़्यादातर बेस्ट कंपनीज की बैलेंस शीट बहुत लीन रहती है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है क्योंकि जब भी आप डाउन साइकिल में देखेंगे तो डाउन साइकिल में बेस्ट बिजनेसेस सर्वाइव and they actually keep grabbing more market share from the weaker competitors because weaker competitors की balance sheet भी weak होती है and stronger players की balance sheet भी ज़्यादा strong होती है. पर यहाँ पर एक और इससे linked concept है capital efficiency का. तो यहाँ पर उन्होंने एक हमें paints industry का example दिया था. तो this is also one of his videos which is there on internet. तो paints industry अगर आप example देखते हैं तो this was given 2 years back जब Asian Paints अभी तक sideways movement में नहीं गया था कि industry का जो profit pool है 6,000 crore का है, almost 6,000 crores का. ROC 37% है और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल दीज कंपनीज वे बैक इन 2021 वाज 4,50,000 crores. तो जो चैलेंजर है ग्रासिम इंडस्ट्रीज तो उसका आज का ROC 7.5% है वेयर एज पेंट्स बिजनेस का 37% है. और कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 40,000 करोड़ की है। वेयर एज पेंट्स बिजनेस के अंदर अगर आप देखते हैं तो पेंट्स कंपनीज का अगर मार्केट जो प्रॉफिट पूल है इंडस्ट्री का 6,000 करोड़ है, तो पूरे इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू 4,50,000 करोड़ है। सो ऑलमोस्ट मोर देन 70 times ऑफ इंडस्ट्री प्रॉफिट पूल। तो यहाँ पे जब ग्रासीम आ रहा है तो ग्रासीम के लिए बहुत सेंस बनती है, बिकॉज ग्रासीम कितना कैपिटल डिप्लॉय करेगा इस बिजनेस में। सो ग्रासीम इज डिप्लॉइंग ऑलमोस्ट मोर देन 5,000 करोड़, आई थिंक वो अमाउंट उन्होंने बढ़ा भी दिया, विच इज़ 1/3 ऑफ इंडस्ट्री कैपिटल। तो इंडस्ट्री के अगर आज आप देखते हैं पेंट्स इंडस्ट्री में, तो ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टेड है, जिसमें से 5,000 करोड़ ग्रासीम डिप्लॉय करने वाला है। एंड एक बहुत नेचुरल एक्सटेंशन है कि 70% ऑफ 55,000 ऑफ बिरला पुट्टी वॉल डीलर्स ऑल्सो स्टॉक पेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चंस वर्थ पॉन्डरिंग, दिस वाज अगेन गिवन 2 years back, वाज कि विद बिरलास कैश फ्लोज एंड जिंदल्स फॉर ए, इज इट लाइकली डैट 6,000 करोड़ ऑफ इंडस्ट्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट वुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। माने कि अगर पूरे इंडस्ट्री का प्रॉफिट 6,000 करोड़ का है और ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गए, तो देर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ चांस इज दैट कि दैट इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स मल्टीपल प्लेयर्स। एंड रिसेंटली अगर आप कुमार मंगलम बिरला का एक इंटरव्यू देखते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा था कि दे वॉन्ट टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट पेंट्स मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री, विच मीन्स जो सेकेंड लार्जेस्ट पे इस टाइम पे अगर बर्जर पेंट्स आता है, तो इट आइडली मीन्स इज दैट कि पूरी इंडस्ट्री का ROC कम होने वाला है। बिकॉज अगर ग्रासीम का ROC 7.5% है, सो दे विल बी इवन हैप्पी विद अ 15-16% ROC, वेस इंडस्ट्री का ROC 30-35% है। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस जो एक इन्वेस्टर को सोचना चाहिए कि यार अगर कॉम्पिटिशन आ रहा है तो कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं है कि बहुत कम कैपिटल से आ रहा है, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री की 1/3 ऑफ कैपिटल बेस से आ रहा है। आई थिंक वो 5,000 करोड़ 2 साल पहले था, अब वो शायद से और जो अमाउंट ऑफ कैपेक्स उन्होंने अनाउंस करा है पेंट्स बिजनेस के लिए वो और भी बढ़ गया है। आई थिंक वो 6-7,000 करोड़ का हो गया। सो ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ इंडस्ट्री के जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उतना एक कंपेटिटर इंडस्ट्री के अंदर लेके आ रहा है। इवन दो अगर एशियन पेंट्स हो गया ये सब अपना मार्केट शेयर होल्ड भी कर लेते हैं, बट फिर भी आपका ROC नीचे जाने वाला है, बिकॉज टू अर्न द सेम डिग्री ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी यू नीड टू हैव हायर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये थर्ड की लर्निंग थी कि कैपिटल एफिशिएंसी इंडस्ट्रीज का और बिजनेसिस का कैसे सोचना चाहिए। फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स द फोर्थ की लर्निंग, एंड फोर्थ की लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ की लर्निंग है इज दैट यूजली व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल एक्सपेक्ट द टॉप टू बी हायर एंड पीपल एक्सपेक्ट द बॉटम टू बी लोअर। पीपल टेंड टू एक्सट्रैपोलेट मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी एट द रॉन्ग टाइम। तो हम लोग मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी को रॉन्ग टाइम पे एक्सट्रैपोलेट कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर साइक्लिकल, जैसे इन्होंने हमें फर्स्ट की लर्निंग में बताया। तो एग्जाम्पल लेते हैं रिसेंटली जो रेलवे स्टॉक से इनका एग्जाम्पल लेते हैं। तो रेलवे बिजनेसिस में पीक ऑर्डर बुक्स बनी हुई है, यहाँ से रेलवे का जो जो बजट एलोकेशन है इससे अगर यहाँ से ज़्यादा बढ़ता है तो 15-20% केगर पे बढ़ना मुश्किल है जो लास्ट 2-3 years में हुआ। तो अगर आपकी पीक ऑर्डर बुक्स बनी हुई है एंड यहाँ से ज़्यादा ऑर्डर बुक में ग्रोथ नहीं आ सकती, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो सकती है कि हम पीक ऑर्डर बुक पे इन बिजनेसेस को वैल्यू कर रहे हैं एंड ये ऑर्डर बुक हो सकता है रिपीट ना हो। सिमिलरली केमिकल स्टॉक्स में क्या होता है 21 में कि उनकी मार्जिन्स वर एट पीक और लाइफ टाइम आए एंड वहाँ से उन मार्जिन्स का रिपीट होना बहुत मुश्किल था। तो एट द पीक ऑफ द साइकिल इन्वेस्टर्स टेंड टू एक्सट्रैपोलेट, जैसे अल्काइल अमाइंस का एग्जांपल है, आई थिंक ये हमने चैनल पे आज से 2-3 साल पहले भी डिस्कस करा था कि उनके एक एसीटोनिट्राइल करके केमिकल गए जिसके प्राइसेस बहुत हाई चले गए। तो उन हाई प्राइसिंग को मतलब इन्वेस्टर्स ने क्या करा, डिस्काउंट कर दिया कि इट विल रिमेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड वॉट एंडेड अप हैपनिंग इज दैट एसीटोनिट्राइल जो केमिकल अल्काइल अमाइंस बनाती है उसकी प्राइसिंग 140-130 पर किलो से 280-300 हो गई थी, एंड आज वापस 280-300 से 140-130 के आसपास आ गई और एक्चुअली बिलो ही चली गई है। सो दैट अगेन मीन्स कि आप वन ऑफ मार्जिन्स को एक्सट्रैपोलेट नहीं कर सकते। तो एज इन्वेस्टर्स व्हाट वी कैन डू इज दैट लास्ट 5-10 years के कंपनी के जो एवरेज मार्जिन हैं उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि आज एवरेज मार्जिन से ज़्यादा मार्जिन चल रहे हैं कम मार्जिन चल रहे हैं। फाइनली कमिंग टू द फिफ्थ की लर्निंग जो उनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है जिससे हम सीख सकते हैं एज इन्वेस्टर्स। सो फिफ्थ की लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फिफ्थ की लर्निंग इज that he is a balance sheet focused investor and he also looks for companies which are transforming their balance sheets. To balance sheet focused investor kaun hote hain? To simple hai ki balance sheet focused investor ka kya rehta hai ki agar aap kisi bhi company ki balance sheet ko common size karke dekhte hain to yahan pe ek bahut simple example hai ki kisi bhi company ki balance sheet ko agar aap common size karte hain aur unke case studies mein agar sugar industry ke example lete hain to sugar industry ke andar jis company ke paas zyada inventory hogi, सो अगेन वहाँ पे साइक्लिकलिटी जब टर्न करेगी तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर देम। वाई सो? बिकॉज अगर किसी कंपनी की आप बैलेंस शीट कॉमन साइज कर रहे हैं, माने एक परसेंटेज में देख रहे हैं कि 100 रुपीज़ के एसेट है तो उसमें से कितना रुपीज़ इसमें पड़ा है, तो अगर किसी शुगर कंपनी में इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो वॉट हैपन्स इज दैट कि जब शुगर के प्राइसेस बढ़ते हैं और आपकी इन्वेंट्री का जो प्रोक्योरमेंट रेट है दैट इज़ एट अ चीपर प्राइस, एंड व्हाट हैपेंस इन दैट सिनेरियो, इन्वेंट्री गेन्स होते हैं और कभी कभी इतने भयानक इन्वेंट्री गेन्स होते हैं, इज दैट कंपनी के इन्वेंट्री गेन्स इज इक्वल टू द इंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द इंटायर बिजनेस. सो दिस इज द फोकस ऑफ बैलेंस शीट. एक और बैलेंस शीट फोकस इन्वेस्टर कैसे होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल केस स्टडी दिखाता हूँ. इस बिजनेस की आप बैलेंस शीट देखिए और इसको कॉमन साइज करते हैं, यू विल ऑब्जर्व इज दैट कि कंपनी का डेट कैसे खत्म हो गया एंड धीरे धीरे करके डेट खत्म हो रहा है और कैश बढ़ते जा रहा है, राइट? तो डेट खत्म हो रहा है, कैश बढ़ते जा रहे हैं, अगेन दिस इज बैलेंस शीट ट्रांसफॉर्मेशन. सो सम ऑफ द इन्वेस्टर्स रियली फोकस ऑन द बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में कैसे अगर कर्जा कम हो रहा है तो इट मीन्स, या डेट कम हो रहा है तो इट मीन्स दैट द फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस आर बिकमिंग स्ट्रॉगर. सो दिस इज दीज आर द फाइव की प्रिंसिपल्स जो हम केनेथ अंद्रादे की इन्वेस्टिंग फिलोसफी से सीख सकते हैं. आप भी मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव की प्रिंसिपल कौन सा लगा. नाउ फाइनली कमिंग टू व्हाट इज पोर्टफोलियो इज इन ओल्ड ब्रिज एट द मोमेंट. तो पोर्टफोलियो के अगर हम पहले फ्रेमवर्क देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि पोर्टफोलियो का जो आज एवरेज पी रेशियो है दैट इज़ एट 20 टाइम्स, एंड एवरेज पी रेशियो अगर 20 टाइम्स के आसपास है तो एवरेज प्राइस टू बुक भी जो इस पोर्टफोलियो का है दैट इज़ क्लोज टू 2 to 2.2 टाइम्स. एंड पोर्टफोलियो में आज किस सेक्टर के स्टॉक ज़्यादा हैं, तो सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर है, मेटल्स एंड माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, कंज्यूमर स्टेबल्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं थोड़े से, टेक्नोलॉजी और एनर्जी है. तो लार्जेस्ट होल्डिंग अगर आप देखते हैं तो एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ रेडिंगटन, तो इसका पी मल्टीपल 12-13 टाइम्स का है. इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे है जिसका पी मल्टीपल 16-17 टाइम्स का है. श्रीराम फाइनेंस है जिसका 13-14 टाइम्स का है. औरबिंदो फार्मा है जिसका 21 टाइम्स का है, क्योंकि फार्मा में इसकी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत आएगी बट मार्जिन कभी ना कभी आएगा, तो वॉल्यूम ग्रोथ के चक्कर में ही ग्रोथ काफ़ी फास्ट दिखने लग जाएगी, बट एक्सीडेंटली मार्जिन कम देन द प्रॉफिटेबिलिटी विल गो थ्रू द रूफ. HCL टेक है यहाँ पे, लैंडमार्क लाइफ साइंसेज है अगेन 20-20.75 टाइम्स पे, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स है, मार्क्सन्स फार्मा है, ITDC सीमेंटेशन है, इंडिया मार्ट है, राइट? देन हिंदाल्को करके मेटल्स एंड माइनर्स में, सो अगेन मेटल्स एंड माइनिंग बिजनेसेस में व्हाट इज व्यू इज दैट ऑल दीज कंपनीज हैव डीलेवरेज्ड, राइट? तो आज तक इंडियन मेटल एंड माइनिंग कंपनीज में ऐसा नहीं हुआ कि कंपनीज हैव डीलेवरेज्ड. तो डीलेवरेज के बाद क्या होता है कि आपकी बैलेंस शीट अगेन फोकस ऑन द बैलेंस शीट ट्रांसफॉर्मेशन, इज दैट की पूरी बैलेंस शीट साफ हो चुकी है, तो माने नथिंग कैन किल यू, राइट? तो एक ही कमोडिटी साइकिल आएगी जिसमें प्राइसेस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो एल्युमिनियम हो. एंड व्हाट हैपेंस इज व्हेन दैट कमोडिटी साइकिल कम्स एंड आपने डी लेवरेजिंग करके आप अपने खुद के कैश फ्लो से कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हो, इज दैट यू जस्ट नीड दैट वन साइकिल ऑफ प्राइसिंग इंक्रीजिंग, एंड इफ दैट हैपेंस अगेन द प्रॉफिटेबिलिटी विल गो थ्रू अ रूफ. सिमिलरली अगर हम आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं तो और पोर्टफोलियो में कावेरी सीड्स है अगेन 12-13 पी पे, टाटा स्टील सिमिलर जो भी हमने मेटल एंड माइनिंग की बात करी, एंथनी वेस्ट प्रेस्टीज स्टेट्स रियल एस्टेट के अंदर, NCC अगेन कंस्ट्रक्शन स्पेस में, AI इंजीनियरिंग गुजरात स्टेट पेट्रोनेट एंड सिंजीन इंटरनेशनल. सो अगेन सम ऑफ द नेम्स आर वेरी वेरी यूनिक इन नेचर एंड डेफिनेटली वी विल हैव टू सी कि हाउ ही डज एज अ म्यूचुअल फंड हाउस, बिकॉज पास में तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहे. तो अभी तक के अगर हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं तो हमने आज के सेशन में क्या क्या सीखा, तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि मिस्टर केनेथ अंद्रादे है कौन, फिर हमने चेक करा कि उनकी फाइव की प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग फिलॉसफी क्या है, फिर हमने उनका जो आज का पोर्टफोलियो है वो चेक करा, फिर हमने चेक करा कि आज एक्सपेंस रेशियो जस्ट ऑन द हायर साइड है बिकॉज म्यूचुअल फंड जस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है. तो प्रोज एंड कॉन्स के अगर हम वे करें तो प्रोज के अंदर क्या है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो हिस्टोरिकली इस्टेब्लिश है, और प्रोज के अंदर क्या रहा है कि इन्वेस्टिंग फिलॉसफी थोड़ी यूनिक है एंड कैपिटल साइकिल से लिंक्ड है, बेसिकली इज गोइंग इन टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स जो आज मार्केट फैंसी के अंदर नहीं है. तो ये तो हमने प्रोज के अंदर देखा कि एक डीप वैल्यू स्ट्रैटेजी है. कॉन्स के अंदर क्या हो सकता है कि फंड अभी रिसेंटली नया है तो हर एक इन्वेस्टर को इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पज आपके सामने रिसर्च प्रेजेंट करना. और कॉन्स के अंदर क्या हो सकता है कि आज का एक्सपेंस रेशियो 1.44% के आसपास है, तो एक्सपेंस रेशियो रियली मैटर्स फॉर लाइक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इन द लॉन्ग टर्म. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग कॉन्स. एंड साथ साथ और क्या हो सकता है कॉन्स के अंदर कि मार्केट इटसेल्फ हो सकता है कि अभी इस टाइम पे एक्सपेंसिव हो, तो हमें देखना पड़ेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ द फंड परफॉर्म्स. इफ यू फाउंड द एनालिसिस टू बी रियली यूजफुल एंड ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगला म्यूचुअल फंड हमें सीरीज के अंदर कौन सा एनालाइज करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SYC. जय हिंद.